أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وان تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سورة البقرة آيات 184-187 جماعت احمدیہ مسلمہ کے نزدیک یورپ میں آج رمضان مبارک کا پہلا دن ہے اور آج پہلا روزہ ہے لیکن جنگ کی ایک خبر سے مجھے معلوم ہوا कि यहाँ बहुत से दूसरे फ़िरक़ों ने जुमेरात ही को पहला रोज़ा शुमार करके रमज़ान शुरू कर दिया था। इससे मुतल्लिक मुख्तसर वजाहत पेश करनी चाहता हूँ। इल्मे फलकियात के माहरीन इस अम्र से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अगरचे बाज़ दिनों में चांद मतले पे ज़ाहिर तो होता है और ज़मीन के किनारे से उभरता तो है, लेकिन अगर उसकी उम्र छोटी हो और देखने वाले के साथ उसका जाविया बहुत छोटा हो तो वो किसी तरह भी नज़र आना मुमकिन ही नहीं है। ख़ा मतला कैसा ही साफ क्यों ना हो, लेकिन वो चांद जो छोटी उम्र का हो और उसकी उम्र माहरीन ने मुअय्यन कर रखी है मसलन 15 मिनट से कम उम्र का हो, तो किसी कीमत पर भी किसी सूरत में भी वो नज़र आ नहीं सकता। बस कुरान करीम ने मन शाहिदा मिनकुम उश्शहरा की शर्त लगाई है, जिसका मतलब यह है कि चांद की आँखों के साथ रोयत मुमकिन हो और उसकी शहादत दी जा सके। बस जब ऐसा चांद जो छोटी सी उम्र का होकर छोटी ही उम्र में मर जाता है वो किसी तरह तरह भी आँख से नज़र आना मुमकिन ही नहीं, तो उस पर शरीयत के अहकामात की बुनियाद रखना किसी तरह भी जायज़ नहीं, क्योंकि हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस किस्म का चांद कभी ना दिखाई दिया, ना कभी पहले दिखाई दिया, ना कभी बाद में दिखाई दिया दे सकता है। बस जमात अहमदिया का मौक़िफ़ 100% दुरुस्त है और बाज़ दूसरे मुसलमानों ने भी इस मौक़िफ़ की तायीद की है और अखबारात में इसकी तायीद में बाज़ खतूत भी लिखे हैं। बहरहाल ये फ़िक्री बातें ऐसी हैं जिनमें अफसोस है कि उम्मत मुस्लिमा में इख्तलाफात होते ही रहते हैं और होते चले जाएंगे जब तक अक्लें एक तर्ज फ़िक्र पर सोचना ना शुरू करें और दिल हम आहंग ना हों, ऐसे इख्तलाफात का रास्ता बंद नहीं किया जा सकता। जिन आयात करीमा की मैंने तिलावत की है यह रमज़ान मुबारक से ताल्लुक़ रखती हैं। इनका तर्जमा यह है कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तक़वा अख्तियार करो और तक़वा हासिल करो। गोया के रोज़े रखने का मकसद तक़वा बयान फरमाया गया, इससे तक़वा में तरक्की होती है। अय्यामुन मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं और इनमें बहुत से फ़वाद तुम्हारे लिए मुज़मिर हैं। फ़मन काना मिनकुम मरीज़न, अय्यामुन मादूदात में ये लफ्ज़ ज़ाहिर तो नहीं है कि बहुत से फ़वाद मुज़मिर हैं, मगर ये मज़मून इसके अंदर शामिल है कि चंद दिन की बात है, उसके मुकाबले पर तुम इतने फ़ायदे होंगे, थोड़ी सी तकलीफ़ उठा लो तो नुकसान नहीं बल्कि बहुत से फ़ायदे होंगे। फ़मन काना मिनकुम मरीज़न वला सफ़रिन, हाँ तुम में से अगर कोई मरीज हो या सफ़र पर हो, फ़ाइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, उसे इजाज़त है कि वो दूसरे दिनों में रोज़े पूरे कर ले। वअलल्लज़ीना युतीकूनहु, और वो लोग जो इसकी ताकत रखते हों उनको फ़िदिया ताम देना होगा, जो एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। यहाँ युतीकूनहु के दो तरह से तर्जमे किए जा सकते हैं। एक युतीकून का तर्जमा ये होगा जो ताकत नहीं रखते, और एक तर्जमा ये होगा जो ताकत रखते हैं। तो ये दोनों मज़मून बहुत उम्दगी के साथ इस मौके पर इतलाक़ पाते हैं। जब हम ताकत नहीं रखते से की बात करेंगे तो इससे मुराद ये होगी कि जो लोग रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते उनके लिए फ़िदिया ताम है। हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही माने शुमार किए हैं, और ये मतलब यह है कि कुछ ऐसे हैं जो रोज़े की वैसे ताकत रखते हैं मगर सफ़र की वजह से ताकत के बावजूद रोज़ा छोड़ते हैं, वो फिदिये के जरिए इस कमी को पूरा कर सकते हैं और एहसास महरूमी को पूरा कर सकते हैं। और युतीकूनहु में जहाँ मुस्बित माने मुराद लिए जाएँ, यानी जो उसकी ताकत रखते हैं, यहाँ ताकत से मुराद फिदिये की ताकत होगी, ना कि रोज़ा की ताकत। तो मतलब ये होगा कि वो लोग जो रोज़े की ताकत तो रखते हों मगर इलाही रुख्सत से इस्तेफादा करते हुए रोज़ा ना रखते हों, और उन्हें ना रखने का एहसास हो, और वो ये ताकत रखते हों कि किसी गरीब को खाना खिला सकें, तो गरीब को खाना खिलाकर अपने एहसास से महरूमी को पूरा कर लें, एहसास से महरूमी की तस्कीन कर लें। फमन ततवा खैरन फहुवा खैरुल्लाह, और जो शख्स तौई तौर पर ये नेकी, जिसको जाहिर लफ्ज़ों में जाहिर नहीं किया गया कौन सी नेकी, फमन ततवा, बस जो शौक से अपने मर्जी से, किसी जबर से नहीं, किसी इस नेकी को इख्तियार करना चाहे, तो उसके लिए बेहतर है। इससे गालिबन मुराद फिदिये की अदायगी है, यानी वो लोग जो रोज़ा रखने की ताकत ना भी रखते हों उनको भी फिदिया देना चाहिए, और अगर वो फिदिया दें तो उनके लिए बेहतर है। दूसरे इससे मुराद तौई रोज़ों का ज़िक्र हो सकता है, नफली रोज़ों का ज़िक्र हो सकता है। एक तो फर्जी रोज़ों की बात ख़त्म हुई, इस मौके पर नफली रोज़ों का भी ज़िक्र होना चाहिए था कि क्या नफली तौर पर भी रोज़े रखे जा सकते हैं। तो कुरान करीम ने उसकी भी तालीम दे दी कि फर्जी रोज़ों में तो शरायत के साथ बात खोल दी गई, इसके अलावा अगर तुम नफली रोज़े रखना चाहो तो बहुत ही बेहतर है। चुनांचे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कसरत से नफली रोज़े रखते थे कि एक महीने के फर्जी रोज़ों के साथ तीन महीने के, यानी अगर सारे दिनों को शुमार कर लिया जाए तो हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल के हिसाब से आप तीन महीने के नफली रोज़े भी रखते थे। गोया एक किस्म की वसीहत की आखिरी हद, यानी एक बटा तीन इस रंग में पूरी हो गई। बाद लोग दसवें हिस्से की वसीयत करते हैं, और साल में एक महीना दसवें हिस्से के करीब तर है, और अगर चार महीने के रोज़े रखे जाएं तो वो वसीयत की इंतहाई हद, यानी एक बटा तीन को तक पहुँच जाता, वो कुर्बानी एक बटा तीन को छूती है। जिसका मतलब यह है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ की दूसरों को इजाज़त देते थे और जिस हद तक इजाज़त देते थे, उसका मुकम्मल नमूना ख़ुद पेश फरमाया करते थे। आप एक बड़ा तीन से जायद माली कुर्बानी या जानी कुर्बानी की बिलमूम इजाज़त नहीं देते थे, सवाए इसके कि कोई गैर मामूली इस्तिस्नाई सूरत हो, जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपने आपका घर का पूरा माल वसूल फरमा लिया, और वो भी मखसूस आदमियों के लिए, उनकी ताकतों को देख कर आप ऐसा फ़ैसला फरमाते थे। मगर अमूमी दस्तूर जो आपके नमूने से और कौल से साबित है वो यही है कि कुर्बानी को एक बटा तीन की हद तक पहुँचाओ, क्योंकि उसमें दूसरों के भी हकूक़ हैं, तुम्हारी बीवी के भी हकूक़ हैं, बच्चों के भी हकूक़ हैं, अजीज़ों हमसायों के हकूक़ हैं, गुरबा के हकूक़ हैं, वो कुर्बानियाँ इनके अलावा हैं। और अगर इंसान उनको इबादत समझ कर खुदा की मर्ज़ी की खातिर सर अंजाम दे, तो इन मानों में सारी की सारी ज़िंदगी और तमाम अमवाल और जो कुछ इंसान खर्च करता है वो सब कुछ खुदा के यहाँ इबादत ही शुमार होगा। फरमाया फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल्लाह वान तसूमु खैरुल्लकुम। हाँ, यहाँ ये बात ज़ाहिर कर बतानी ज़रूरी है कि यहाँ ये मुराद नहीं है कि मरीज़ हो और सफ़र पर हो और ख़ुदा की तरफ से तुम्हें रुख्सत दी गई हो कि रोज़े नहीं रखने, तो तुम शौक़ से बेशक रोज़े रख लिया करो। सफ़र में रोज़ा रखने के लिए की इजाज़त नहीं है, क्योंकि खुदा ने इन मानों में कि खुदा ने रुख्सत अता फरमा दी है, और रुख्सत से फ़ायदा ना उठाना भी एक किस्म की नाशुक्री बन जाती है। इसलिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस बात पर जोर दिया कि जब सफर तैयार करो तो ज़बरदस्ती खुदा को खुश करने की कोशिश ना करो। और इसी मज़मून को कुरान करीम की ये आयत आगे जाकर खोलती हैं। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरानु, ये वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान उतारा गया जो लोगों के लिए हदायत है, और सिर्फ आम हदायत नहीं, वो बय्यनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, और हदायत में से भी जो बहुत ही आला दर्जा की खुली खुली हदायत है, रोशन हदायत हैं, जो चमकते हुए जवाहर की तरह रोशन और चमकदार हैं, वो हदायत कुरान करीम अपने अंदर रखता है। वल फुरक़ान, और ऐसी आसमानी दलीलें जो खरे खोटे में तमीज़ करने वाली हों, जो दिन को रात से अलग करने वाली हों, वो खुली खुली दलीलें भी चोटी की अपने अंदर रखता है। यानी फुरक़ान ख़ुद मज़मून खोलने वाली दलील को कहते हैं, या ऐसी बात जो अपने अंदर इलाही शान और शौकत की वजह से, शौकत रखने की वजह से अपनी ज़ात में एक चमकता हुआ निशान बन जाए, उस पर फिर बय्यनात मज़ीद लगा देने का मतलब यह है कि जैसा कि कुरान करीम से पता चलता है, पहले अम्बिया को भी फुरक़ान अता की गई, मगर ये मुहावरा बय्यनात मिनल फुरक़ान का मैंने पुराने अम्बिया के मुतलक नहीं पढ़ा, अगर होगा कहीं तो मेरे इल्म में नहीं। तो मुराद ये है कि कुरान करीम ना सिर्फ हदायत रखता है, ना सिर्फ फुरक़ान रखता है, बल्कि हदायत और फुरक़ान में जो चोटी की आला दर्जे की हदायत और आला दर्जे की फुरक़ान हैं वो कुरान करीम में आपको मिलेंगी। फमन शहद अमिन को मुशाहरा फल यसुम हो, बस जो भी इस महीने को देखे, इसका गवाह बने, या इस महीने को पाले, इस महीने में से गुजरे, ये सारे माने शहदा के अंदर शामिल हैं। फल यसुम हो, उसका फ़र्ज है कि वो रोज़े रखे। वह मन खाना मरीजन ओला सफर फ़ैदा तुम नयाम उखर, फिर दोहराया गया इस बात को कि जो कोई मरीज हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे अयाम में रोज़े रखे। ये बात साबित करती है कि वहाँ मन ततवा का मज़मून पहले जब ये इजाज़त दी गई उससे उस पर इतलाक़ नहीं पाता था। इससे पहले यही मज़मून गुजर चुका है कि जो भी मरीज हो या सफ़र पर हो वो दूसरे अयाम में रोज़े रखे, और उसके मान बात फरमाया कि हाँ कोई शौकिया नफली नेकी करना चाहे तो उसके लिए बेहतर है। ये शुबा पैदा हो सकता था कि एक तरफ खुदा ने इजाज़त दी और दूसरे अयाम में रोज़े रखने की हदायत फरमाई, साथ ही फरमा दिया कि जो शौकिया नेकी करे तो शौक़ से करे। इसका मतलब यह है कि वो हदायत इन मानों में अहमियत नहीं रखती कि ज़रूर उस पर अमल किया जाए। अमल कर सको तो बेहतर, ना करो तो कोई हर्ज नहीं, बल्कि अगर नफली रोज़े रख लो तो और भी बेहतर है, फ़हुवा खैरुन लकुम। ये गलत फहमी पैदा हो सकती थी, इसलिए इस मज़मून को दोहराया गया है। और यहाँ वो रुख्सत शौक़ से रोज़ा रखने की इजाज़त अगर जहन में हो तो उसका जिक्र ना करके इस ख्याल को रद्द फरमा दिया गया। बस कुरान करीम जब तकरार करता है तो बेवजह तकरार नहीं करता, किसी एहतमाली गलती को दूर करने की खातिर कुरान करीम तकरार करता है, या नए मजामीन की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए तकरार फरमाता है। तुम्हारा मन खाना मरीजन औला सफरन फ़ैदा तुम्हें नयामन उखर, याद रखो अगर तुम मरीज हो या सफ़र पर हो तो तुम्हें फिर दूसरे अयाम में रोज़े रखने होंगे। युरीदुल्लाह बिकुम अल-युस्रा वला युरीदु बिकुम अल-उस्र, मज़ीद खोल दिया इस बात को कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी को पसंद फरमाता है, तकलीफ़ को पसंद नहीं फरमाता। रोज़े से मुराद तकलीफ़ देना नहीं है। मरीज़ के लिए अगर वो हकीकी मरीज़ हो, यानी अपने नफ्स के तवहमात का मरीज़ ना हो, बल्कि वाकिया का मरीज़, ना रखने में या रोज़ा रखने की इजाज़त ना देने में एक बड़ी हिकमत यह है कि रोज़े के साथ इबादात चलती हैं, اور بہت سی نیکیاں اختیار کرنی پڑتی ہیں. ایک شخص جو حقیقتاً مریض ہو اس کو اگر روزہ کے مشقت میں بھی ڈال دیا جائے تو اس کا جینا دوبھر ہو جاتا ہے. اس کے لیے خیالات کی پاکیزگی اور یکجہتی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی توجہ کی طرف توجہ کرنا ممکن نہیں رہتا اور وہ عبادات کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس لیے محض اس وجہ سے کہ سب نے روزے رکھے ہوئے ہیں اب روزہ رکھ لوں تو آسانی پیدا ہو جائے گی, اگر وہ روزے رکھتا ہے تو یہ نیکی نہیں ہے بلکہ کمزوری کا نشان ہے. بس قرآن کریم نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان میں گہری حکمتیں ہیں, ان سے پوری طرح استفادہ کرنا چاہیے, لیکن شرط یہ ہے کہ مرض حقیقی ہو اور نفس کا بہانہ نہ ہو. پھر فرمایا والے تکمل العزا تھا والے تو قبر اللہ علامہ ہداکم, تاکہ تم اس عزت کو پورا کر سکو. جب یہ فرمایا کہ تم نے روزے اگر بیمار ہو اور سفر پر ہو تو رمضان میں نہیں رکھنے, بعد میں رکھنے ہیں, تو بعد میں رکھنے کی حکمت اب بیان فرمائی ہے کہ بعد میں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ تم اس عزت کو جو مومنوں پر فرض کی گئی ہے تم پورا کر سکو اور اس سے محروم نہ رہ جاؤ. بس بعد کے روزے رکھ کر تم مہینے کے 30 روزوں کی تعداد پوری کر لو گے یا 29 کی تعداد پوری کر لو گے تو تمہیں اطمینان ہو جائے گا کہ ہمیں کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا جس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اس میں مریضوں اور سفر والوں کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ اگرچہ تم رمضان کے مبارک مہینے میں روزے نہیں رکھ سکے لیکن تمہارے بعد کے روزے خدا کے نزدیک ایسے ہی ہوں گے جیسے تم نے رمضان کے روزوں کی عدت پوری کر لی ہو اور تمہیں کوئی روحانی نقصان نہیں ہے. جب نقصان کوئی نہیں ہے تو بے وجہ پھر تکلف کر کے رمضان میں روزے رکھنا جائز نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا سَأَلَكَ يَا محمد, اگر تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں, فَإِنِّي قَرِيب, میں قریب ہوں, اجیب و دعوت دعا اِذَا دَعَان, جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعوت کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہوں, فلیستجی بولی, شرط یہ ہے کہ وہ بھی میری باتوں پر لبیک کہا کریں اور جن نیکیوں کی طرف میں ان کو بلاتا ہوں ان پر عمل کیا کریں, ولیومنو بھی اور مجھ پر ایمان لائیں, لعلہم یرشدون, تاکہ وہ ہدایت پائیں. اس مضمون کا روزوں کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے اور یہ جو روزوں کا ذکر چلا ہے اس رکوع سے اس کا پہلے رکوع کی میں مذکور عبادات کے ساتھ گہرا تعلق ہے, کیونکہ اس سے پہلے رکوع میں زکوٰۃ کا یعنی مالی قربانی کا ذکر چل رہا تھا اور اس سے پہلے بھی پہلے رکوع سے بھی پہلے یہ مضمون شروع ہوا ہے. تو در حقیقت میں دو الگ الگ باتیں بیان نہیں بلکہ ایک ہی چیز کے دو مختلف پہلو بیان ہو رہے ہیں. مالی اور جانی قربانی خدا کی خاطر کیسے کی جاتی ہے اور خدا تم سے کیا توقع رکھتا ہے کہ ان شرائط کے ساتھ ان قربانی کو قبول فرمائے گا اور ان قربانیوں کے نتیجے میں تمہیں کیا کچھ حاصل ہوگا. زکوٰۃ کے متعلق ذکر فرما کر یعنی مالی زکوٰۃ کے مالی حصے کے متعلق ذکر فرما کر اس کے فوائد بیان کر دیے اور بتایا کہ اس سے تمہارے اموال میں کمی نہیں آئے گی بلکہ وہ بڑھیں گے, تمہارے اعمال میں پاکیزگی پیدا ہوگی اور تمہارے اندر تمہیں برکتیں نصیب ہوں گی, نشو و نما ہوگی ہر طرح سے. اس آیت ان آیات میں جس زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے اس کی جزا خدا خود ہے اور یہ مالی اور جانی قربانی جو زکوٰۃ کے عنوان کے تابع آتی ہیں ان کا معراج ہے یعنی روزہ. دوسری عبادتیں جیسے کہ نماز ہے وہ اپنا ایک الگ مرتبہ اور مقام رکھتی ہیں, وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوتی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کی عبادت کو زکوٰۃ سے الگ بیان فرمایا ہے اور بعض پہلوؤں سے روزوں پر فضیلت دی ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس مضمون پر روشنی ڈالی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارا مضمون مربوط ہے اور ایک دوسرے سے یہ باتیں گہرا تعلق رکھتی ہیں. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ الجسد الصوم و صیام و نصف الصبر, کہ ہر چیز کی آپ نے فرمایا ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزے ہیں اور روزہ نصف صبر ہے. نصف صبر اس لیے فرمایا کہ صبر میں کلیتاً کسی چیز سے محرومی پر جو انسان حوصلہ دکھائے اور راضی برضا رہے یہ سارا مضمون بھی داخل ہے. لیکن رمضان شریف میں روزے کے دنوں میں انسان جو صبر دکھاتا ہے اس امید پر دکھاتا ہے کہ تھوڑی دیر کی بات ہے یا چند دنوں کی بات ہے پھر مجھے کھانے پینے کی ہر جائز چیز سے استفادے کی کھلی چھٹی مل جائے گی. تو نصف صبر فرمایا. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں حدیث کی جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا اس کے پہلے رکوع میں زکوٰۃ کا مضمون چل رہا ہے. دیکھیں قرآن کریم کی آیات کس طرح ایک دوسرے سے گہرا فرمایا. اور یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمودہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کے سب کام اس کے اپنے لیے ہیں مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا بنوں گا. یہ جس کی طرف میں نے قرآن کریم کی ان آیات پر روشنی ڈالتے ہوئے اشارہ کیا تھا.
ہدایت کے بعد مان بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہ اگر لوگ میرے متعلق تجھ سے سوال کریں یا جب مجھ سے تیرے متعلق مجھ سے سوال کریں تو میں قریب ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص جب پوچھے خدا کے متعلق تو خدا وہیں اس کے باتوں کا جواب دینے لگے گا. جو روزے کی عبادت جیسا کہ حق ہے ادا کرے اس کی جزا کا بیان ہو رہا ہے. اور جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے کی جزا میں خود ہوں, یہ قرآن کریم کی آیات اسی مضمون کو بیان فرماتی ہیں اور یہی اس مضمون کا پہلے مضمون سے تعلق ہے کہ جو شخص خدا کی خاطر خدا تعالیٰ کی فرمودہ شرائط کے مطابق روزے رکھتے ہیں ان کو کیا جزا ملے گی. جیسا کہ زکوٰۃ کی جزا پہلے بیان ہوئی ہے, اس زکوٰۃ کی جزا یہ ہے کہ میں اللہ فرماتا ہے میں خود اس کی جزا ہوں. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب, ان کو بتا دے کہ روزوں کے نتیجے میں ان عبادات کے نتیجے میں میں ان کو ان کے قریب ہو جاؤں گا یا ان کو اپنے قریب دکھائی دوں گا, اور اتنا قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان, جب پکارنے والا مجھے پکارے گا تو میں اس کی باتوں کا جواب دوں گا. فلیستجیبو لی. اس معنی میں فلیستجیبو کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ یہ نشانات دیکھیں گے تو پہلے سے بڑھ کر میری اطاعت کریں گے. بس ایسے لوگوں کو میں نصیحت کرتا ہوں جن پر میں خود جزا بن کر ظاہر ہوں کہ پہلے سے بڑھ کر میری ہدایات پر لبیک کہیں اور ولیومنو بھی, اور مجھے ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہوئے مجھ پر ایمان لائیں. بغیر ایمان کے تو خدا کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے. خدا سے سوال جواب اور دعاؤں کی قبولیت کا نشان بے ایمان لوگوں کو تو عطا ہوا ہی نہیں کرتا. تو فل یومنو بھی کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے اعلیٰ تر مقامات بھی آتے چلے جاتے ہیں. ایک مقام ہے ایمان کا جس پہ انسان سفر کا آغاز کرتا ہے, اور دن بدن جتنا وہ خدا کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اس کے ایمان میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے, مزید نشانات ظاہر ہوتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ جب وہ خدا تعالیٰ سے الہامات کا شرف حاصل کر لے, مکالمہ مخاطبہ کی سعادت اس کو نصیب ہو, کشوف صاحب کشف ہو جائے, سچی رویا اس کو دکھائی دینے لگیں, یہ ساری باتیں ہیں تجربے جو خدا کے قرب رکھنے والوں کے تجارب ہیں. جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو فرمایا اس کا ایمان اور ترقی کرتا ہے, اس کی اطاعت کی طاقت بڑھتی ہے. ان معنوں میں فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ وہ مزید ہدایت پاتے چلے جائیں. اور یہ ایک نہ ختم ہونے والا رستہ ہے. یرشدون میں ایک جاری دریا کا سا مضمون بیان ہوا, ایک ایسے مسافر کا سا مضمون ہے جو رستے پر چلتا چلا جاتا ہے اور ہر قدم اسے مزید ہدایت کی طرف لے جاتا ہے. پھر فرمایا انہو لی و انا اجری بے, وہ میرے لیے عمل کرتا ہے بس میں اس کا اجر ہوں. اس میں ایک چھوٹی سی مشکل ہے جس کا حل کرنا ضروری ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان دوسرے اعمال جو کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے اور روزہ میرے لیے رکھتا ہے, حالانکہ کوئی عمل بھی جو خدا کے لیے نہ کیا جائے وہ بے معنی اور نامراد ہوتا ہے. اور مومن کی شان کے تو خلاف ہے کہ وہ کوئی عمل اپنے لیے کرے, سارے عمل اپنے لیے کرے اور ایک صرف روزے کا عمل خدا کی خاطر کرے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ حال تھا کہ کوئی ایک ادنا سی حرکت بھی اور ادنا سا سکون بھی ایسا نہیں فرماتے تھے جو خدا کی خاطر نہ ہو. بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالتے تھے تو اللہ کی خاطر. تو پھر یہ آپ کیا فرما رہے ہیں, اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے ورنہ کسی غلط فہمی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. مومن کی ہر عبادت بالآخر خدا کی خاطر ہوتی ہے. پھر روزے میں اور عام عبادت میں یہ کون سی تفریق ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اس مضمون کو سمجھنا چاہیے. روزمرہ جو ہم عبادتیں کرتے ہیں ان عبادتوں پر اگر ہم قائم رہیں تو ہمارے لیے وہ فی ذات ہی کافی ہیں. اور خاص طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کھانا اور پینا جائز ہے, اپنی اہلیہ سے تعلقات جائز ہیں, اور اس قسم کی بہت سی جائز باتیں ہیں جو ان کی خدا نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے. بس اس حالت میں زندگی بسر کرنا جس میں خدا کی عطا کردہ نعمتوں سے استفادے کی اجازت ہے اور بعض جگہ پابندی ہے, دراصل اس مضمون کو ظاہر کرتا ہے کہ پابندیاں 100% ہماری خاطر ہیں, اگر ہم ان پابندیوں کو توڑیں گے تو نقصان پہنچائیں گے, اور استفادہ جن شرائط کے ساتھ کرنے کی اجازت ہے اس طرح اگر استفادہ کریں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے اور ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے. بس اس سود و زیاں کے مضمون کو خوب کھول کر روزمرہ کی زندگی میں ظاہر فرما دیا گیا, اور انسان جو حقیقت میں नेकी को समझते हुए नेकी बजा लाता है, वो जानता है कि ये सब कुछ अपनी खातिर कर रहा है और रुकने में उसका उसका फ़ायदा है जहाँ रोका गया है, चलने में उसका फ़ायदा है जहाँ उसको चलने की इजाज़त दी गई है। बस ये सारा मज़मून इस बात को ज़ाहिर करता है कि हर चीज़ इंसान जो खुदा की खातिर वो ज़ाहिर कर रहा है दर हकीकत उसके अपने फ़ायदे के लिए है। रमज़ान में उन चीज़ों से रोकना पड़ता है जिनकी इजाज़त है, जिनके फ़ायदे और नुकसान खूब खोल कर बयान होने के बावजूद बाद सूरतों में जहाँ फ़ायदा नुकसान से बढ़ कर हो हमें उनसे इस्तेफादे की इजाज़त दी गई है। बस जायज़ चीज़ों से रुकना ये खुदा की खातिर है, यानी हर चीज़ खुदा की खातिर ही है, लेकिन रमज़ान मुबारक में या रोज़ों के आम रोज़ों के वक्त इंसान जायज़ चीज़ों से जो रुकता है उन जायज़ चीज़ों में अगर नुकसान होता तो आम हालात में भी खुदा रोक देता। इसलिए बावजूद इसके कि आम फ़ायदे के लिहाज से वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने फ़ायदे के सारे काम करता है, रमज़ान में जो जायद मुशक्क़त उठाता है और जायज़ ज़रूरतों को भी तज देता है और बाद सूरतों में उसकी सेहत को ख़तरात भी लाहक होते हैं, बहुत सी तंगी बर्दाश्त करनी पड़ती है, बहुत सी कामों में हर्ज भी वाक़या होता है, लेकिन खुदा की खातिर ऐसा करता है। बस इसलिए खुदा आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खुदा की खातिर इन मानों में करार दिया है कि एक जायद फेल है जो आम नेकी से बाला है, और इसमें इंसान ज़रूरी नहीं है कि अपने ज़ाती फ़वाद समझ कर इस पर अमल कर रहा हो। तभी बहुत से लोग हैं जब वो रोज़ों का महीना गुजरता है तो सुकून में आ जाते हैं अचानक, वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने मौका दे दिया, बड़ा बोझ था इस बोझ से हम निकल आए, ये फितरी आवाज़ उनकी होती है। वही लोग हैं जो रमज़ान में सुकून पाते हैं जो बहुत आला मकामात पर पहुंच चुके होते हैं और वो भी शर्त सेहत और शर्त जवानी के साथ। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक जवानी के अय्याम में 6 महीने के रोज़े मुसलसल रखे और उसके अलावा भी बहुत रोज़े रखे, लेकिन बड़ी उम्र में ख़ुद फरमाते हैं कि ये तो जवानी के मज़े थे, अब तो मुझ में ये ताकत नहीं रही। फरमाते हैं एक वक्त था कि मैं पैदल चल जाता था बटाले 12 मील और फिर वापस भी आ जाया करता था और मुझे कोई थकावट नहीं होती थी, अब मैं 5-6 मील चलता हूँ तो थकावट हो जाती है, खाने में ताखीर हो तो मैं दिक्कत और नुकसान महसूस करता हूँ। तो फरमाया ये रोज़ों के मज़े भी जवानी की बातें हैं। तो इसलिए बाद सूरतों में रोज़ों से जिस्म को नुकसान भी पहुँचता है और हर हालत में इंसान ये नहीं कर सकता नेकी। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते हैं कि आम नेकियों से एक मुख्तलिफ चीज़ है और खुदा की खातिर तौफीक की हद तक ये नेकी इख्तियार करनी चाहिए। बस इन मानों में फमन ततवा का एक और माना हमारे सामने उभरा कि रोज़े की नेकी ऐसी है जो मुस्तकिलन एक हालत पर नहीं रखी जा सकती, जबकि वो सारी नेकियां जो इंसान अपने लिए इख्तियार करता है वो मुस्तकिलन एक हालत पर रखी जा सकती हैं। मसलन नमाज है, बीमार भी हो, बुढ़ापे की आखिरी हद को भी छू रहा हो, नमाज फ़र्ज ही रहेगी, खा उसके अंदरूनी तौर पर नमाज पढ़ने की सहूलतें मिल चुकी हों, मगर रोज़े की ये बात नहीं है। रोज़ा या पूरा रखेंगे पूरी शर्तों के साथ या नहीं रखेंगे, ये हो ही नहीं सकता कि आप बीमार हैं तो अल्लाह ताला कहे चलो पानी पी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक बीमार हो थोड़ा खा लिया करो, फल खा के दूध पी के गुजारा कर लो, लेकिन रोज़ा ज़रूर रखो। बस रोज़े की नेकी का इस्तेताअत से गहरा ताल्लुक़ है। बस मन ततवा के माने एक ये बने कि रोज़ा एक ऐसी नेकी है जिसका इंसानी इस्तेताअत से गहरा ताल्लुक़ है, इस्तेताअत ना हो तो इसको इख्तियार नहीं करना चाहिए और इससे नुकसान हो सकता है। बस साहिब इस्तेताअत लोग जब तक इस्तेताअत के ज़माने में हों उस इस्तेताअत से इस्तेफादा करें तो उसकी जज़ा खुदा बनेगा, और अल्लाह ताला महज अपनी खातिर एक चीज़ छोड़ने वाले को जिसकी आम हालत में इजाजत हो गैर मामूली तौर पर इज्जत बख्शता है और उसे अपना क़ुर्ब अता फरमाता है। अब रोजे के साथ बाज ऐसी बुराइयां भी लगी हुई हैं, जैसे कि मैंने बयान किया था कि ज़ाहरी जिस्मानी कमजोरियां बाज बुराइयां भी इसके अंदर नजर आती हैं, लेकिन खुदा की खातिर इंसान बर्दाश्त कर सकता है। उनमें से एक मुंह की बदबू है। अब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लतीफ मिजाज के हामिल थे कि वो तभी जो आपको शौक़ था, तभी शौक़ थे जिनमें आप खुद फरमाते हैं कि मेरी फितरत को एक तभी लगाव, इनसे मेरी फितरत को एक तभी लगाव है, उनमें एक खुशबू थी और बदबू से सख्त मुतनफ़िर। और ये लताफत और नज़ाफत आपने खुदा से पाई थी। हर चीज़ हम खुदा ही से पाते हैं, मगर खुदा से इन मानों में पाना कि खुदा के मिजाज इख्तियार करके इंसान वही रंग उन्हीं रंगों में रंगीन हो जाए और वैसे ही लताफत के मुजाहरे करे। लेकिन रोज़े के मुतल्लिक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ेदार की मुँह की बू भी मुझे ऐसी पसंद है कि मुश्क की बू भी उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती, इसलिए कि मेरी खातिर किया है। तो रोज़े के ज़ाहरी नुकसानात भी कुछ दिखाई देते हैं, लेकिन चूंकि वो महज अल्लाह की मोहब्बत की खातिर इख्तियार किए जाते हैं, इसलिए खुदा ताला उन सूरतों को जो आम हालात में काबिल नफ़रत हैं उनको भी काबिल मोहब्बत हालतों में बदल देता है। वरना बदबू और बदबू की पसंदीदगी एक वक्त में इकट्ठे रहते हुए नज़र नहीं आते, एक दूसरे से मुतज़ाद दिखाई देते हैं। और चूंकि ये मोहब्बत का मज़मून है इसलिए अल्लाह ताला को पसंद है। इस पर आप मज़ीद गौर करें तो आपको अपनी ज़िंदगी की तजारब में ऐसे वाक़ियात दिखाई देंगे। जिस शख्स से प्यार हो और मोहब्बत हो उसकी बीमारी की हालत की बदबू और कई और ऐसी चीज़ें इंसान को न सिर्फ ये कि बर्दाश्त होती हैं बल्कि उसकी खातिर उसके करीब रहते हुए उन चीज़ों से एक लगाव भी पैदा हो जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि वो बुरी लगनी बंद हो जाती है। अपनी ज़ात से इंसान मोहब्बत करता है और रोज़ाना गुस्ल खाने वगैरह में जाता है हाजात के लिए, अपनी बू बुरी नहीं लगती। बाद लोगों को पता ही नहीं होता कि हम बू से वाले हिस्से से आए हैं, लेकिन कोई और शख्स वहाँ चला गया हो उसकी बू से शदीद नफरत पैदा होती है। तो ये क़ुर्ब की इलामतें हैं और अल्लाह ताला ने मोहब्बत का पैगाम दिया है। फरमाया, ए रोज़ेदारों, मैं तुम मेरे महबूब बन गए हो, तुम्हारी बज़ाहिर बुरी बातें भी मुझे प्यारी लगने लग गई हैं। और ये इश्क का मज़मून है। बस रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका इश्क से गहरा ताल्लुक़ है और महबूब की खातिर अल्लाह को पेश नज़र रखते हुए उसके प्यार के लिए आप जिन चीज़ों से परहेज़ करते हैं जिनकी आम हालात में इजाज़त है उसकी जज़ा भी फिर अल्लाह ताला खुद बन जाता है, क्योंकि आशिक की जज़ा तो महबूब ही है। बस ये वो क़ुरबानी ज़कात का मेराज है रमज़ान रोज़ा, और रोज़े का मेराज रमज़ान है जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ और तमाम बरकतें जो उम्मत मोहम्मदिया को तामी इनका रमज़ान शरीफ से गहरा ताल्लुक है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद फरमाते हैं कि रोज़े के तो दो मज़े हैं और हर रोज़ेदार को की दो मौजें हैं, एक जब वो रोज़ा खोलता है और एक जब खुदा उसको मिलता है। अब ये है असल तवज्जो वाली बात जिसकी तरफ मैं सारी जमात को ख़ास तौर पर मुतवज्जे करना चाहता हूँ। जब इंसान रोज़ा खोलता है तो उसको इसलिए मज़ा आता है कि बहुत तलब पैदा हो चुकी होती है एक चीज़ की, और जब वो उस तलब की सैराबी हो, जब भूख के वक्त रोटी मिले, प्यास के वक्त पानी या और नेमतें नसीब हों, तो इंसान को आम हालतों से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर रमज़ान में से हम गुज़र जाएं और भूख की तलब और उसके बाद उस तलब की सैराबी से तो वाकिफ हों, लेकिन खुदा की तलब और खुदा के दीदार की लज्जत से नाशना रहें तो ये रमज़ान एक बेमानी और बेहकीकत सा रमज़ान हो जाएगा और अपने मकसद को खो देगा। क्योंकि मकसद ये बयान फरमाया, इन्नी करीब, तुम रमज़ान में से गुजरो तो मुझे अपने करीब पाओगे। मकसद ये बयान फरमाया कि मैं रोज़ेदार की खुद जज़ा बन जाता हूँ। बस वो कैसा रमज़ान है जिसमें भूखे रहने की जज़ा तो मिलती हो लेकिन रूह को तिश्नगी की कोई जज़ा नसीब ना हो, और इसका ताल्लुक तिश्नगी से भी है, तिश्नगी ही महसूस ना हो। बस अगर तिश्नगी महसूस ना हो, यानी खुदा की तलब पैदा ना हो और उसके लिए दिन ब दिन ज़्यादा ख्वाहिश बढ़ती ना चली जाए, तो ये मर्ज़ है। वो मरीज़ जो लंबा अरसा भूखा रहते हैं और उसके बावजूद खाने की ख्वाहिश पैदा नहीं होती, उनके खाने की ख्वाहिश ना पैदा होना उनके लिए नेमत तो नहीं है, क्यों तकलीफ़ नहीं हो रही, खाना नहीं खाते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अलामतें गहरे मर्ज में ज़ाहिर होती हैं, और खाने की तलब ना होना ये बात ज़ाहिर करता है कि मरीज़ दिन ब दिन मौत की तरफ हरकत कर रहा है और इसकी ज़िंदगी की आखिरी जो जो गहरी ज़िंदगी के सरचश्मे हैं वो सूखने लग गए हैं, और तलब का ज़िंदगी के गहरे सरचश्मों से बहुत गहरा ताल्लुक है। इसलिए मैंने अपने हमेशा के होम्योपैथिक के तजर्बे में ये बात महसूस की है कि जब किसी दवा से फ़ायदा हो तो खोई हुई तलब ज़िंदा होनी शुरू हो जाती है, और मरीज़ जब ये अलामतें ज़ाहिर करता है कि मुझे फ़लाँ चीज़ दो जिससे पहले नफ़रत हो चुकी थी, तो मैं समझता हूँ कि अब खुदा के फजल से मरज़ से इफाक़ा हो रहा है और ज़िंदगी लौट के आ रही है। तो इस रमज़ान में हर अहमदी को इस पहलू से अपना जायज़ा लेना चाहिए कि वो बीमार तो नहीं कहीं, रमज़ान से गुज़रा है, भूख के बाद खाने की लज्जत से आशना हो गया, प्यासे रहते हुए जब पानी मिला या कोई और नेमत मिली, मसलन बाज़ों को कोका कोला का शौक है, किसी को शरबत वाले दूध का मज़ा आ रहा होता है, ठंडे मशरूब कई किस्म के हैं, उनसे उसने आम हालात से बहुत बढ़कर प्यास की वजह से लज्जत पाई, तो ये वो तजारब हैं जो हर कसो नाकिस को नसीब होते हैं, क्योंकि ये बदनी तजारब हैं। लेकिन रमज़ान का मकसद अल्लाह ताला फरमाता है तकलीफ़ देना नहीं है और रूहानी फवायद हासिल करना है। अगर हमारे तजर्बे बदनी हदूद तक महदूद रहें और रूहानी लज्जात की तरफ ज़हनी ना जाए, तो इसका मतलब यह है कि उसर तो हमने हासिल कर लिया, यसर हासिल ना की। क्योंकि कुरान करीम जब फरमाता है कि अल्लाह यसर चाहता है, तो यहाँ वो यसर मुराद है जो खुदा ताला के लिखा का यसर है, जिसका कुरान करीम की एक और सूरत में ज़िक्र है, इन्ना माल उसर यसरन, इन्ना माल उसर यसरा, फैज़ा फ़रग़ था फ़न सब व इला रब्बे का फ़रग़। वहाँ यसर की आला दर्जे की तारीफ़ कुरान करीम ने ख़ुद बयान फरमा दी, फरमाया ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर तंगी के बाद, उसर के माना है तंगी, यसर का माना है आसानी, फरमाया हर तंगी के बाद हमने आसानी रख दी, हर तंगी के बाद हमने आसानी रख दी, और तेरी आसाइश का मुंतहा यह है कि तू खुदा की इबादत कर। पस फैज़ा फ़रग़ था, पस जब दुनिया के धंधों से, दुनिया की मुसीबतों और मुश्किलात से तू फारिग हो जाया कर, फ़न सब खुदा के हुजूर खड़ा हो जाया कर, वैला रब्बे का फ़रग़, और अपने रब से अपना यूसर चाह। तो वो यूसर जो उस सूरत में बयान हुआ है वो यूसर यहाँ मुराद है, क्योंकि यहाँ भी लिखा है बारी ताला के मज़मून पर ये आयात मुंतज होती हैं, वहाँ तक जाकर इंतहा पकड़ती हैं। रोज़े की तंगी अल्लाह ताला के नज़दीक मकसूद बिज़ात नहीं है, बल्कि इसके नतीजे में एक आसाइश पैदा करना मकसूद है। याद रखो कि अगर तुमने उस आसाइश को ना पाया तो रोज़े की तंगी महज बेकार जाएगी, और तुम्हारे ऊपर ये बात सादिक आएगी कि हर उसर के साथ उसर ही है और इसके बाद कोई उसर नहीं है। बस दुनियावी आसाइश को जो हर बदन के साथ वाबस्ता होती है, जो तंगी के बाद तंगी दूर होने पर इंसान महसूस करता है, उसको मकसूद ना समझें। यहाँ यूसर से मुराद वो इस्तिलाही यूसर है जिसमें अल्लाह ताला की लिका मुराद है, और कुरान करीम ने खूब खोल कर बयान फरमा दिया कि इन्हीं करीब मैं करीब हूँ, बतौर जजा के तुम्हारे करीब हूँ। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मज़मून को खूब रोशन फरमा दिया। तो ये रमज़ान इस बात की निगरानी का रमज़ान बना दें कि आप और आपके अहलोयाल लिखाए बारी ताला की तलाश करें, उसके लिए दिल में तलब पैदा करें और प्यास पैदा करें, और महसूस और अगर ये नहीं होता तो फिर बीमार हैं, फिर इस बीमारी का इलाज ज़रूरी है। हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुतलका मलफूजात में बहुत से मजामीन फैले पड़े हैं जिनका रमज़ान से ताल्लुक़ है, अगरचे तहरीरों में भी है, लेकिन मलफूजात में जो बेसाख्तगी पाई जाती है और जो गहरा असर पाया जाता है वो अपना एक अलग मिजाज रखता है। और मैं समझता हूँ कि आम तरबियत के लिए मलफूजात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। बस मुतलका मलफूजात को जमातों को भी तलाश करके आम करना चाहिए, और इस रमज़ान में इंतज़ामिया को ये कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रूहानी तरबियत की तरफ तवज्जो हो और मकसूद बिज़ात खुदा ताला हो, यानी इस रमज़ान से गुज़र कर औलियाउल्ला पैदा हो, इस रमज़ान से गुज़र कर औलियाउल्ला आला दर्जे के मानों में ना सही मगर ऐसे कसरत से अहमदी पैदा हों जो खुदा के क़ुर्ब का लुत्फ़ उठा चुके हों, जिनकी बातों का खुदा ने किसी न किसी रंग में जवाब दे दिया हो, खा सच्ची ख्वाबों के ज़रिए दिया हो, खा दिल के अंदर ख़ास तमव्वुज पैदा करके दिया हो, बाज़ दुआओं की हालतों में गैर मामूली तौर पर गिरिया की तौफीक अता फरमाई हो और उसके नतीजे में सकीनत बख्शी हो। कई तरीक़े हैं अल्लाह ताला के क़ुर्ब के इजहार के, कुछ छोटे छोटे इब्तदाई हैं और कुछ ऐसे हैं जो आगे बढ़ते हुए औलियाउल्ला के करीब हो जाते हैं, और फिर इंसान वो लुत्फ़ भी उठाता है जो औलियाउल्ला के लुत्फ़ हैं। और जब मैं औलियाउल्ला की बात करता हूँ तो उसमें तमाम अंबिया शामिल हैं। सबसे बड़ा वली नबी हुआ करता है, और औलियाउल्ला की इस्तलाह अमलन रूहानी मरातिब में से चारों मरातिब पर इतलाक पाती है, यानी साले, शहीद, सिद्दीक और नबी। बस इन मानों में, वसीम तर मानों में, हमें खुदा ताला का वली बनने की कोशिश करनी चाहिए, और रोज़ा हमें इस वलायत के हसूल के करीब तर कर देता है। सबसे बेहतर सवारी जिस पर बैठकर हम खुदा के का क़ुरब इख्तियार कर सकते हैं वो रोज़े की सवारी है, क्योंकि इसमें बैठने से पेशतर इसके कि आप सफ़र इख्तियार शुरू करें, अल्लाह ताला की आवाज़ आती है इन्हीं करीब, यानी अगर सही मानों में आप रोज़ादार बन जाएं, इसके सारे हकूक़ अदा करें, तो अल्लाह ताला की क़ुर्ब की आवाज़ आपको अता होगी। इस ज़मन में सारे घर का माहौल दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मसलन घरों में इबादत का एक शौक़ पैदा करना चाहिए। बड़े छोटे सारे फर्जी इबादत भी बड़ी तवज्जो से अदा करें, उसके अलावा नफली इबादत करें। तहज्जुद के वक्त माँ बाप उठें तो बच्चों को भी उठाएं और उनको बताएं कि सिर्फ खाना मकसूद नहीं है, अल्लाह ताला की लिखा मकसूद है। पहले इबादतें करो, फिर वक्त निकालो खाने के लिए आओ, और उनको उनकी अक्लों और उनके इल्म के मुताबिक खुदा ताला का प्यार पैदा करने के लिए कुछ बातें बताएं, कुछ ज़ौक शौक उनके दिलों में बेदार करें। बचपन में ये आसान होता है, और अगर इंसान खुदा ताला से दूरी की हालत में लंबा अरसा गुजार दे तो बड़ी उम्र में उसकी गंदी आदतें, दुनिया पर मुंह मारने की जो के रुझानात सख्ती इख्तियार कर जाते हैं। اور اس کے لیے پھر نرمی کے مضامین کی طرف لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے. بس نرمی کے مضامین جو دل کو نرم کریں, جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے انسان کو تیار کریں, وہ بچپن سے ہی دلوں میں ڈالنے چاہیے, اور عبادات کا ماحول گھروں میں پیدا کرنا چاہیے, تلاوت کی عادت ڈالنی چاہیے ہر بچے کو. آپ جب تلاوت کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اکثر بچوں کو تلاوت کرنی نہیں آتی, اور وہ جو میں کئی سال سے پیچھے پڑا ہوں انصار خدام لجنا کے کہ خدا کے لیے اس طرح توجہ کرو, کم سے کم صحیح تلاوت تو سکھا دو اس نسل کو, ورنہ ہم خدا کے حضور پوچھے جائیں گے اور ہماری اگلی نسلوں کی بے اعمالیاں بھی ہم سے سوال کریں گی. تو اس طرف بھی توجہ پیدا ہوگی. ان تینوں تنظیموں کے عہدیداروں کو اس دوران تجربہ ہو جائے گا کہ کس حد تک ہم نے ان نصیحتوں پر عمل کیا ہے, اور ہر گھر کو پتہ چل جائے گا کہ کس حد تک انہوں نے ان خدمت کرنے والوں سے تعاون کیا ہے خود اپنی بھلائی کی خاطر. لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس پہلو سے بہت سے خلا ہیں. بس یہ رمضان ایک بیداری کا رمضان بن جائے, ہوش کا رمضان بن جائے, اپنے تزیے کا رمضان بن جائے, اور انسان ان دونوں پہلوؤں سے اپنا جائزہ لے کہ کیا میں دین کی ابتدائی ضروری باتیں پوری کرنے کی طرف متوجہ ہو چکا ہوں کہ نہیں, کیا میرے گھر میں ہر بچے ہر بڑے کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی آ گئی ہے کہ نہیں, اور کیا اس رمضان کے ساتھ عبادتوں میں ذوق شوق بڑھا ہے کہ نہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طلب پیدا ہوئی ہے کہ نہیں. خدا کرے ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی کی مدد سے سب کچھ ہونا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے ہمارے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں, تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں, تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ آج دنیا کی تمام قوموں میں سب سے زیادہ عبادت گزار احمدی بن جائیں, ان کی عبادت تیرے حضور درجہ قبول پائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.